मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 4 मई 2018 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, हालांकि मुझे याद है कि आज मुझे आपके सामने एक शेर या कविता का कोई अंश प्रस्तुत करना चाहिए था और फिर उस पर हम लोग कुछ बात करते, लेकिन कल मैंने एक ऐसा विषय छेड़ दिया है जिसके कारण मुझे लगा कि उसी पर कुछ और बात की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आज मैं कविता शेरो शायरी वाले पैटर्न को लेकर के नहीं चल पा रहा हूं, लेकिन हम जो बात करेंगे वो वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी। और वह बात यह है कि कल आपको ध्यान होगा कि मैंने जो स्वच्छता अभियान जो सरकार ने शुरू किया है उसमें कैसे आप इंटर्नशिप ले सकते हैं और अपने खासकर 2-3 महीनों का बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कुछ चर्चा की थी। इनफैक्ट उसी चर्चा को मैं आज थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहा हूं। कल मैंने एक इस प्रोग्राम स्पेसिफिक बात की थी, यानी कि आप उस स्वच्छता अभियान में शामिल हों और उसके लिए फिर एक प्रोसेस है कि आप जाकर के अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर आपका नाम सेलेक्ट होगा और फिर आपको बुलाया जाएगा। उसका अपना एक सिस्टम है, आपको उसमें एक संगठनात्मक सिस्टम में काम करना पड़ेगा, है ना। एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उसमें फिर ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग यानी कि उसका संगठन गठन होगा, उसके बाद आपको एक समूह में डाला जाएगा, फिर आपको काम करने के लिए कहा जाएगा और उस सिस्टम से आप काम करेंगे। और उसकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और ये सर्टिफिकेट आगे बहुत काम आता है, हम नहीं जानते कि वो कहां कितना काम आ जाए। लेकिन मित्रों, मैं ये भी जानता हूं कि हर एक के बस की बात ये नहीं होती। बहुत लोग तो आलस्यवश कि कौन कंप्यूटर में जाए और फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराए और फिर देखे करे, तो उस हिसाब से छोड़ देते हैं। दरअसल आज का लाइफ मैनेजमेंट इनफैक्ट ऐसे ही आप सबके लिए है कि जो वो तकलीफें नहीं उठाना चाहते, वो परेशानी मोल नहीं लेना चाहते, बिल्कुल सीधे साधे तरीके से चीजों को करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि चीजें भी सीधे साधे तरीके से होती रहें। तो इसीलिए मित्रों, मैंने सोचा कि नहीं, आज इस मुद्दे पर भी बात करनी चाहिए और उनके लिए भी अपनी तरफ से मुझे कुछ कहना चाहिए जो सच में इस सोच के हैं। दरअसल अभी देखिए, मई जून ऑलमोस्ट जुलाई का भी कुछ हिस्सा आप समझ लीजिए, ये जो समय होता है बेसिकली युवाओं के लिए एक प्रकार से वैकेशन का समय होता है, खाली वक्त होता है सामान्यतया। हालांकि अब जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है तो चीजें वैसी नहीं रह गई हैं पहली जैसी, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत हम मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ संकट एक और भी है कि पूरा का पूरा जो दौर होता है वो बेहद गर्मी का दौर होता है। मतलब 20 जून तक तो आप मान ही सकते हैं कि गर्मी पड़ती है और इसके बाद फिर ठीक है, कभी बादल आ जाएंगे, तेज हवाएं चलने लगेंगी, बारिश हो जाएगी, फिर धूप निकल जाएगी, तो वो धूप छांव का खेल लगभग 20 जून के बाद शुरू हो जाता है सामान्य तौर पर। इसके बाद फिर आप समझ लीजिए कि रिमेनिंग जो 1.5 महीने का समय होता है वह होता है। लेकिन चलिए अगर हम इस 3 महीने को न भी लें, यानी कि मई से जुलाई तक को न लें, तो 2 महीने तो हम बड़े आराम से ले सकते हैं, मई और जून। मुझे लगता है मित्रों कि इस मई और जून के वक्त का इस्तेमाल हमारे युवाओं को बड़े ही खूबसूरत तरीके से करना चाहिए और बहुत ही रचनात्मक तरीके से करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि उस रचनात्मकता के लिए आप अपना घर छोड़कर जाएं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो घर छोड़कर ही अभी तक रह रहे थे बाहर और अब चूंकि छुट्टी मिली है तो वो घर लौटे हैं, तो उनका मन करता है कि अपने घर में ही रहे, क्यों कहीं बाहर जाएं। तो उनके लिए भी बहुत सी गुंजाइश होती है, मतलब वो ये ना सोचें कि नहीं अब तो वो घर लौटे हैं तो उनको आराम ही करना है। मित्रों, आराम, कितना आराम, सप्ताह में जो हम एक दिन आराम करते हैं जनरली संडे को, तो वो आराम ही होता है। और इस पैटर्न पर ही हमें अपने पूरे जीवन को लेकर के चलना चाहिए, ये नहीं कि अब साल भर पढ़ाई की है तो अब अंगड़ाई लेकर के 2 महीने के लिए आराम करें। नो, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, या ईमानदारी के साथ सोच करके देखिए, बीच बीच में आप छुट्टियां लेते रहे हैं, त्योहार पर छुट्टियां मिलती रही हैं, आप घर भी आते रहे हैं, संडे की छुट्टी तो होती ही होती है, वैसे भी आपने बंक मारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि साल भर आप काम करते रहे हैं। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि अब 2 महीने तो घर लौटे हैं यार घर में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, ये आपका बिल्कुल सही सोचना है कि घर में ही रहना है, तो आप अपने घर के आसपास ही कुछ अपने लिए ऐसा काम चुन लीजिए। और ये काम कस्बों में भी अवेलेबल है, गांव में भी अवेलेबल है और शहरों में भी अवेलेबल है, अपेक्षाकृत बड़े शहरों में भी अवेलेबल है। ये जरूर है कि उनके जो फॉर्म, उनके जो रूप हैं, वो थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं भोपाल जैसे शहर की बात करूं, तो भोपाल जैसे शहरों में आपको दूसरी बहुत सी एक्टिविटीज होती हुई मिलेंगी। और लगभग लगभग सभी शहरों में लोग जानते हैं कि अब गर्मी में स्टूडेंट फ्री हुए हैं, युवा वर्ग लालायित है इन चीजों के लिए, तो कुछ एक्टिविटीज तो शुरू कर देते हैं। पता लगा कि कहीं सिंगिंग सिखाई जा रही है, तो कहीं डांस सिखाया जा रहा है, तो कहीं पेंटिंग सिखाई जा रही है, तो कहीं जवाहर भवन जहां है वहां तो पता नहीं कितनी सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज हो रही हैं, कहीं लैंग्वेज सिखाई जा रही है। तो ये तो सिखाने की बात हो गई, जहां आप चीजें सीख सकते हैं। तो चलिए, आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, यानी कि फील्ड में जाकर के काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की कोई चीज ले लीजिए हाथ में, उसे सीख लीजिए, तो ये आपके व्यक्तित्व में ऐड करेगा। मित्रों, मैं यहां ये बात आपको बता दूं कि अभी आप उसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। अभी आपको लग रहा है कि यार इससे क्या होगा, इससे कोई नौकरी थोड़ी ना मिलेगी, इसमें कोई पैसा थोड़ी ना है, इससे क्या हो जाएगा। लेकिन ये जो व्यक्तित्व में आपकी जो क्रिएटिविटी रचेगी बसेगी, ये कमाल का काम करती है आगे चल करके। जब थोड़े से आप मैच्योर हो जाएंगे, मतलब लगभग लगभग 30 साल के आसपास पहुंचेंगे, तब आप इन सबको याद करेंगे। भले ही आपने 2 महीने के लिए ही क्यों ना किया हो, लेकिन आप याद करेंगे कि यार मैंने ये किया था। और उस समय वहां आपके दोस्त बनेंगे, ये दोस्त आपकी जिंदगी भर की संपत्ति होगी, ये जो आपकी कोमल कोमल स्मृतियां होंगी, इन स्मृतियों को आप पूरे जीवन भर याद कर करके सच पूछे तो खुशी के क्षणों को पुनर्प्राप्त करेंगे, फिर से इन्हें याद करेंगे, इन्हीं क्षणों को याद करेंगे। याद रखिए, तो ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो जाइए। आप अगर बिल्कुल दूर गांव में है मान लीजिए, और वहां कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती, सामान्यतया नहीं होती है, तो आप अपने हाथ में एक्टिविटीज लीजिए, अपनी आंखों को खोल करके देखिए, वहां ढेर सारी एक्टिविटीज आपका इंतजार कर रही हैं, मूक तरीके से वो आपको बुला भी रही हैं। लेकिन बस ये है कि आपको बस उन्हें देखना है और उनकी आवाज को सुनना है। दोस्तों, गांव में तो इतने सारे क्रिएटिव वर्क हैं करने के लिए। देखिए, आप गांव के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, संगठनात्मक क्षमता पैदा हो जाएगी, लोगों को बहुत सी चीजों के बारे में आप बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि भाई साफ सफाई रखो, ये क्यों जरूरी है, गर्मी में कैसे रहना चाहिए वो क्यों जरूरी है, पानी कैसे बचाना चाहिए ये क्यों जरूरी है। और अब तो सबसे अच्छी बात गांव में ये हो गई, हम लोगों के समय में नहीं थी, हालांकि पंचायतें उस समय थी लेकिन एक्टिव नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था इनफैक्ट पंचायत सरपंचों को। तो अब तो आप पंचायत में जाएंगे तो वहां लोग लगातार आ रहे हैं, एक्टिविटीज बनी हुई है, आंगनवाड़ी है तो वहां हमेशा महिलाएं आ रही हैं। तो आपने थोड़ी सी पढ़ाई की है, आप शिक्षित हैं, तो गांव के लोगों को थोड़ा सा शिक्षित कीजिए, थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए, ताकि उनके जीवन में थोड़ी सी बेहतरी आ सके। और यहां तक और कुछ नहीं, तो आप गांव के बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए ना, गांव में बच्चे होते हैं जो वहां के स्कूलों में पढ़ते हैं, आप शहर से पढ़ करके गए हैं, अगर आप में आपका जो स्तर है वो थोड़ा सा बेहतर है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उन्हें इकट्ठा कर लें और उन्हें दूसरी चीजें पढ़ाएं। मैथ्स में स्टूडेंट कमजोर होते हैं, थोड़ा मैथ्स उनको बता दें, इंग्लिश से बड़े वो घबराते रहते हैं, तो आपकी डेफिनेटली इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर ही होगी, तो थोड़ा सा उनको इंग्लिश के बारे में जानकारी दे दें, जनरल नॉलेज के बारे में बता दें। आप बड़े शहर में रहे हैं तो किससे सुनाएं गांव के किससे, मोटिवेट उनको करें, उनको भी जीवन की जानकारियां दें कि उन्हें गांव में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि आगे आप भविष्य के नागरिक तो यही सब हैं। यहां तक कि आप बहुत से लोगों को इकट्ठा करके श्रमदान भी करा सकते हैं और खुद श्रमदान करके आप लीडर भी बन सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि यार ये पंचायत की बिल्डिंग है, ये अस्पताल की बिल्डिंग है, ये स्कूल है, देखो कितने समय से इसकी पुताई नहीं हुई है, कितना खराब दिख रहा है, तो लगा दीजिए लोगों को और आप भी लग जाइए, उसकी पुताई कर दीजिए, चमचमा दीजिए उसको। आसपास अगर सफाई नहीं है उनके, तो आप सफाई कर दीजिए, आप अस्पतालों में चले जाइए, अपनी छोटी सी टोली बना लीजिए, जो आपके विवेकानंद जी वगैरह करते थे, सुभाष चंद्र बोस भी ऐसा करते थे कि छोटे से बच्चों की टोली बना ली और अस्पताल चले गए, अस्पताल जाकर के वो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो भी पेशेंट हैं या उनके साथ जो दूसरे लोग आए हुए हैं, उनकी जरूरतें की चीजें पूछ रहे हैं, उनको वो चीजें ला करके दे रहे हैं, किसी को दवाई चाहिए, किसी को खाना चाहिए, किसी को पानी चाहिए, कितने सारे काम है, कामों की कमी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ हमारी आंखों की रोशनी की जो इनको देख सके, और हमारी इच्छा शक्ति की जो हमें प्रेरित करके हमारे कदमों को आगे की तरफ ले जा सके। अदरवाइज मित्रों काम की कमी नहीं होती है। और मैं तो देखिए सीधी सी बात आपसे आप सबसे कह रहा हूं, आप ये सब समाज के लिए भी मत करिए, राइट, आप देश के लिए भी चलिए मत करिए, आप अपने लिए ही कर लीजिए। क्योंकि मान के चलिए कि अगर हम अपने लिए भी कुछ करते हैं ना सही तरीके से, तो वो देश के लिए ही होता है, वो समाज के लिए ही होता है। और ये मैं जितने काम आपको बता रहा हूं, ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि पंचायत की बिल्डिंग अच्छी हो जाए, गांव साफ सुथरा हो जाए, मैं तो इस रूप में बता रहा हूं कि इससे आपका व्यक्तित्व विकास हो, मैं आपके ही हित की बात कर रहा हूं। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती रहती है, और इसी के आधार पर सूरज के पूरी एक साल का की परिक्रमा भी पूरी कर लेती है। मतलब है ना खूबसूरत बात कि आप अपने हित के लिए काम करिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करिए, और उसी से समाज का भी हित पूरा हो रहा है और देश का भी हित पूरा हो रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये व्यावहारिक बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी, और अगर पसंद नहीं आई हो तो थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ मेरे बातों पर विचार कीजिए, एक्शन में आ जाइए। एक्शन में जब आप आ जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको मजा आने लगेगा, डेफिनेटली मजा आने लगेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही अब आज के लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, और साथ ही आप सबसे दो दिनों के लिए इजाजत भी चाहूंगा। सोमवार को आप सबसे फिर भेंट होगी और फिर हम लोग दूसरे विषय पर बात करेंगे। नमस्कार।